તારીખ 29/1/1993 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 5.
मोह के प्रकाश में छुपा हुआ स्वरूप कहते हैं, उसमें क्या है, जैसे नव तत्व में चैतन्य ज्योति छिपी हुई है, नव तत्व में समय सार में आता तो उसमें तो आश्रय पुण्य पाप बंध चारों तत्व आ गया, तो वो भी जीव के भाव कर्म है, तो जीव का तो परिणाम है उसमें, तो उसमें ज्ञान ज्योति चैतन्य ज्योति छिपी हुई है, ऐसा सामान्य जैसे विपरीत श्रद्धा है तो उसमें श्रद्धा का परिणमन है कि नहीं है, तो जीव को श्रद्धा नाम की शक्ति है तब श्रद्धा का परिणमन होता है ना, श्रद्धा तो कर सकता है, विपरीत अविपरीत तो बात की बात है, लेकिन श्रद्धा तो करना उसका स्वभाव है कि नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा ऐसे सामान्य को पकड़ सकते हैं हरेक गुण में से सामान्य को पकड़ सकते हैं, वो बात है उसमें।
જેટલો સ્વરૂપ નો નિશ્ચય બરાબર એટલે યથાર્થ ભાવે ચિંતવે, તેટલું સ્વસંવેદન અડગ અથવા અચળ રહે, અને જેટલું સ્વરૂપ આચરણ થાય તેટલું બરાબર સ્વસંવેદન થાય, એક થતા ત્રણેયની સિદ્ધિ છે। એમાં તો એમ લેવું છે કે સ્વસંવેદન વખતે શ્રદ્ધા ભી ઓર આચરણ ભી હૈ, સ્વસંવેદન જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ, ઓર સ્વસંવેદન હોતે વખત શ્રદ્ધા ભી હૈ ઓર આચરણ ભી હૈ, और जब स्वरूप आचरण है तो उस वक्त स्वसंवेदन भी है और श्रद्धा भी है, एक होने से तीनों होता है, श्रद्धा होने से ज्ञान चारित्र होता है, ज्ञान होने से श्रद्धा चारित्र होता है, और चारित्र होने से श्रद्धा और ज्ञान होता ही है, ये कहने का अभिप्राय है। अनुभव खुदनी बात है, अनुभव ठीक है, અનુભવ પહેલાની વાત નથી, અહીંયા અનુભવ પહેલાના સ્વરૂપ નિશ્ચયની વાત નથી। ગુપ્ત શુદ્ધ શક્તિની સિદ્ધિના પ્રમાણમાં પ્રવેશ કરે કે જેટલું પ્રગટ પરિણમન છે શક્તિનો એટલો મોક્ષ માર્ગમાં એટલો વિકાસ છે, પ્રવેશ કરે એટલે એટલો આગળ ચાલે છે, અને જેમ જેમ શુદ્ધતાની પ્રતીતિમાં પરિણતિ સ્થિર થાય તેમ તેમ મોક્ષ માર્ગની શુદ્ધિ થાય, વિકાસની વાત છે, પછી મોક્ષ માર્ગમાં આગળ બઢતા જતા હે, જૈસે કોઈ અધિક ગાવ ચારે તો નગર નજીક આતા હૈ, વૈસે
શ્રદ્ધાના જોરમાં આગળ બધા આ વાત નથી આવતી,
શુદ્ધતાની પ્રતીતિમાં પરિણતિ સ્થિર થાય, શ્રદ્ધા કે બલ પર આગળ બઢતા હૈ,
you
છવ્વીસ પેજ માં છે. परिणति जो जो शुद्धता की प्रतीति में स्थिर हो, चौथा मोक्ष मार्ग की शुद्धि होती है. प्रतीति सहित स्थिरता जितनी बढ़ती है उतनी मोक्ष मार्ग में विशेष शुद्धि होती है. तो सिद्धांत तो भाषा किसी भी ग्रंथ में किसी भी प्रकार की हो, सिद्धांत तो कहीं बदलता नहीं. दर्शन ज्ञान चारित्र का जो सिद्धांत है वो कहीं बदलता नहीं कहीं भी. तत्व का कौतूहली होकर सकल अविद्या से छूटकर अपने चिदानंद स्वरूप को अवलोके माने इधर अनुभव करे, ऐसा लेना है. निरानंद के केली रूप कला द्वारा स्वरूप को देखें, जिससे अनात्मा का संग फिर न रहे. अनादि मोह के वश होकर अहित में निज हित मान रहा है, उस मोह का भेद ज्ञान से नाश कर और ज्ञान चेतना का अनुभव कर, क्योंकि अनादि अखंडित ब्रह्म पद का विलास तेरे ज्ञान कटाक्ष में है. सहज मात्र में ज्ञान कटाक्ष में मैंने सहज मात्र में है.
सकल अविद्या से छूट कर मतलब
सब अज्ञान से, सकल अविद्या से मैंने अविद्या मैंने ज्ञान अज्ञान से छूटकर, तत्व को कुतूहली होना मैंने जिज्ञासु होना, तत्व का जिज्ञासु होकर के अज्ञान से छूट करके अपना चिदानंद स्वरूप को अनुभव करे.
अज्ञान से दूर हो सद्गुरु वचन रूपी
भजन से, या सद्गुरु रूपी वचन वो तो लेते हैं, बहुत लेते हैं. काम तो अपने से होता है लेकिन बीच में हर जगह सदगुरु की बात लेते हैं, क्योंकि पहले तो अनजान था, सदगुरु ने दर्शाया तभी उनको उनका लक्ष्य गया है, इसलिए सदगुरु का हाँ मैंने जो बोध मिलता है सदगुरु से, उसने ज्ञान नेत्र में जो मलिनता थी वो अंजन से निकाल दिया. जैसे आँख में अंजन होता है तो आँख में जो बिगाड़ है विकार है निकल कर आँख में बिल्कुल देखने का साफ हो जाता है, ऐसा वचन रूपी अंजन सदगुरु के वचन रूपी अंजन है वो. लोकालोक दृष्टि गोचर होता है, ऐसे ज्ञान की महिमा अपार है. ज्ञान की महिमा है सो अपार है. ज्ञानमय मूर्ति की सुरती का सेवन कर करके अनेक मुनि पार हुए. ज्ञानमय मूर्ति का सूरत उसका सेवन कर करके सूरत में एकाग्र होना, सुरती सुरती एकाग्रता सुरती की क्रिया को
नहीं
नहीं नहीं वो बात नहीं है. ये सुरती शब्द आता है साहित्य में, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है. सुरती में एकाग्रता नानमय मूर्ति की एकाग्रता का सेवन करके कर करके अनेक मुनि पार हुए और अपने सहज स्वभाव का खेल है पर परिचय में विषम है। पर का परिचय करता है तो विषमता राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और पर परिचय से सुगम है विषम है और सहज बोध कला द्वारा सुगम है। ज्ञान कला से तो वो सुगम हो जाता है क्योंकि अपने का अपने में अनुभव है और कष्ट क्लेश से दूर है। टाइप में अनंत सुख निधान के स्वरूप भावना करते ही अविनाशी रस उत्पन्न होता है। उस रस का संत सेवन करते आए हैं उसका तू भी सेवन कर। अनंत सुख निधान की स्वरूप भावना करते ही अविनाशी मैंने आत्मरस उत्पन्न होता है। आत्मा अविनाशी है तो उसके रस को भी अविनाशी रस कहते हैं क्योंकि वो रस फिर खत्म होने वाला नहीं है। ये रस फिर खत्म होने वाला नहीं है इसलिए उसको अविनाशी रस कहते हैं। आगे जाकर के उसका नाश नहीं होगा ऐसा रस होता है। और ऐसे रस का सेवन करते करते जो संत है वो इसे ऐसा ही रस का सेवन करते हैं, आत्मरस का सेवन करते हैं, अमृत रस का सेवन करते हैं, उसका तू भी सेवन कर।
अपने परमेश्वर पद का दूर अवलोकन न कर
सेवन करते आए हैं। श्री पद रूप अनुपम ज्योति स्वरूप पद अपना ही है। श्री पद रूप निर्वाण पद रूप अनुपम ज्योति स्वरूप पद अपना ही है। अपने परमेश्वर पद का दूर अवलोकन न कर, अपने क्यों ही प्रभु स्थाप। कोई दूर उसकी दूरी मत महसूस कर, वो तो अपना स्वरूप है, वो कोई दूर नहीं है। अपने परमेश्वर पद का दूर अवलोकन न कर, अपने को ही प्रभु स्थाप। दूर अवलोकन करने से तो दूरी बढ़ती है, भाव में दूरी नहीं रखना। अपना स्वरूप खुद का ही स्वरूप है, उसकी दूरी क्यों रखना। दूरी तो वैसे रखेगा कि मैं तो संसारी हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो रागी हूँ, ये सब दूरी की बात है, ऐसा मत रख। हाँ, जैसे कोई बहुत ऊंची चीज होगी अपने से कोई ऐसा दूरी भाव में लेकर के वो एक आड़ मारता है जी, ऐसा मत कर। गुरु कहते हैं मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा दूर अवलोकन न कर। आप परमेश्वर पद का दूर अवलोकन न कर, मैंने अपना स्वरूप है ऐसा अवलोकन कर, दूर अवलोकन मत कर। एक समय की विभाव पर्याय में अपनत्व रूप में पकड़ में आ जाता है तो जो अपना स्वरूप है उसका अस्तित्व होने पर भी उसका अस्तित्व ग्रहण नहीं होता। अपना स्वरूप तो मौजूद है, बलि बांधते बलि बांधते स्मरण करने से ज्ञान ज्योति का उदय होकर मोह रूपी अंधकार विलय को प्राप्त होता है और चित्त में आनंद सहित कृतकृतता प्रकट होती है। उससे वेग से अवलोकन कर, मैंने पुरुषार्थ पूर्वक इसका अवलोकन कर, शीघ्र वेग से शीघ्र पुरुषार्थ से उसका अवलोकन कर और अन्य पर का ध्यान रोक कर विचार पूर्वक स्मरण कर, तेरा ब्रह्म विलास तुझ में है, तेरा आत्मा का जो अनुभव है विलास है वो तेरे में ही है, कहीं दूर नहीं है, बाहर नहीं है कहीं भी। उससे परमात्मा पद से अन्य क्या अधिक है कि उसे छोड़कर तू पर को ध्याता है, तेरा वो सर्वोत्कृष्ट पद है, उससे कौन अधिक है जगत में, तेरा सर्वोत्कृष्ट पद से कौन अधिक है, परमेश्वर पद से कौन अधिक है। तू तेरा परमेश्वर पद को छोड़कर दूसरे का ध्यान करता है, क्या बात है, इससे अधिक कौन है। चार वेदों का भेद मैंने रहस्य पाकर स्वरूप सुखरूप स्वपद को ग्रहण कर, मैंने चार वेदों में एक ही बात कही है, चार वेद में ये चार अनुयोग है ना, उसको चार वेद कहते हैं। जैन में चार अनुयोग है तो वेदों ने भी चार ग्रंथ रखा, ऐसे जैसे 24 तीर्थंकर है तो 24 अवतार रख लिया लोगों को, तो दुकानदारी में तो ऐसे जो करता है उसी उसकी नकल ही करेंगे, जहाँ आकर्षण लोगों को होता है तो उसकी नकल करे तो आकर्षण हो जाए, ऐसा। तेरी स्वरूप भावना में अविनाशी रस का चुआ चुता है, कभी भाषा ली दी से बारिश आता है ना चुआ समझते, ऐसे स्वरूप भावना ऐसी होनी चाहिए स्वरूप की कि उसकी जो परिणति है वो चालू ही रह जाए। बरसात बंद हो जाती है लेकिन पानी का चुआ तो चालू रहता है, घंटों तक चालू रहता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ऐसा ऐसा जोर से भावना आवे तो फिर आत्मस्वरूप की परिणति है वो, उसका रस चालू चालू रह जाए, रस छूटे नहीं। रस की बात कैसी कितनी आती है अध्यात्म के प्रकरण में, रस की बात बहुत आती है। इसलिए उसकी भावना करके ब्रह्म भाव को मिटा, तेरी भावना ने झूठ मूठी भाव बना रखे हैं, ये उल्टी भावना है, तेरी उल्टी भावना ने झूठ मूठी भाव बना रखे हैं। ऐसा निंद्य कर्म स्वभाव कलोल के प्रकट होने पर ही मिटता है, मगर ना जी हिंदी तो बराबर करे सब भाषा पोतानी भाषा है ना। आवृत्ति मसुदाम अमृतलाल भाई सुधारा फिर अमृतलाल जातक है।
निंद्य कर्म कोई अगर लौकिक मत है
निंद्य
कर्म कोई कहे तो तकलीफ आए मान,
બે વર્ષ પહેલા જ પ્રકાશન થયું છે 1991 માર્ચમાં. હિન્દીની બે આવૃત્તિ છપાઈ ગઈ. દેખ તું ચેતન હૈ ઓર જડ અજાન અચેતન હૈ. ઉસ અજાન મેં અચેતન મેં અપને કો માન કર અશુદ્ધ હુઆ હૈ, યહી અશુદ્ધતા કા કારણ હૈ. દેખ તું ચેતન હૈ, વિચાર કર એસા નહીં લિયા, દેખ તું ચેતન હૈ. ઉનકા પદ્ધતિ એસા હૈ દીપસિંહજી કા, ઉસમેં અવલોકન કા દેખને કા એસા પદ્ધતિ હૈ. ચીજ કો સામને પ્રત્યક્ષ રખ કરકે દીખતે હૈ. અજાન અચેતન કહી તેરે પીછે નહીં પડા હૈ, ઉનકો તો કોઈ ભાન નહીં હૈ પીછે પડને કા, વો કોઈ પીછે નહીં પડા હૈ. તો અપને પદ સે હટકર ઉસકી ઓર મત આ, તો અપને પદ સે હટ કરકે ઉસકી ઓર મતા. જડ કહી તેરા પલ્લા નહીં પકડતા, તો વ્યર્થ હી પરાઈ વસ્તુ કો અપને માન માન કર જૂઠ મૂઠ હર્ષ માનતા હૈ. જૈસે કે કોઈ ચીજ મિલ ગઈ તો હર્ષ હોતા હૈ. આત્મા મેં ક્યા આયા, હર્ષ હુઆ તો આત્મા મેં ક્યા આયા થા. લેકિન વો કૃત્રિમ આનંદ હૈ, જૂઠા આનંદ લેતા હૈ, કલ્પના કરકે આનંદ મનાતા હૈ, કલ્પના સે આનંદ મનાતા હૈ. વાત મેં કોઈ વાસ્તવિકતા નહીં હૈ, આત્મા મેં તો કુછ આતા નહીં. જૈસે મુજે ભોગ મેં સુખ હુઆ મેં સુખી હું, એસી મિથ્યા ભ્રમરૂપ કલ્પના કલ્પના કરકે આનંદિત હોતા હૈ. એ જૂઠા આનંદ હૈ, ક્યોંકિ આત્મા મેં તો કુછ આતા નહીં, આત્મા કો કુછ મિલતા નહીં. તો મેને ખાયા મેને પિયા કલ્પના કર લી ક્યા આયા, જ્ઞાન મેં કુછ આતા નહીં. કોઈ સ્વાદ જ્ઞાન મેં તો મિલાવટ હોતી નહીં, જ્ઞાન તો નિર્લેપ સ્વભાવ સે નિર્લેપ હૈ, નિર્લેપ હી રહેતા હૈ. તો ભ્રમરૂપ કલ્પના કરકે આનંદિત હોતા હૈ, ઉસમે કિંચિત ભી સાવધાની કા અંશ નહીં હૈ. ઉસમે ખુશી હોતા હૈ તો ઉસમે સ્વરૂપ કી સાવધાની કહાં રહી, સાવધાની કા ઉસમે કોઈ અંશ નહીં હૈ. યે એક આશ્ચર્ય હૈ કે તું તીન લોકા નાથ હોકર ભી અપને પૂજ્ય પદ કો ભૂલ કર નીચ પદ મેં અપને કો માન કર વિકલ હોકર વ્યાકુળ રૂપ હુઆ ભટકતા હૈ. આશ્ચર્ય કી બાત હૈ, તીન લોક કા નાથ હૈ, લોગ તો નહીં માનતે. મેં તીન લોક કા નાથ હું એસા सम्यक दृष्टि को अनुभव होता है, लेकिन लोग उनको नहीं मानते हैं। चारों गति में सम्यक दृष्टि होते हैं, और पूर्व कर्म से तो वो बाहर में उनका जो बाह्य दिखाव है वो तो पूर्व कर्म के संयोग वाला है। वो अपने को तीन लोग का नाथ ऐसा अनुभव करता है, और लोग उनको मानते नहीं है। लोग नहीं माने, सारा संसार नहीं मानता है उसको। क्या पूरा संसार उसको तीन लोग का नाथ नहीं मानता है, और खुद तो अनुभव करता है, तो उनको क्या लगता है कि वो लोग नहीं माने इसलिए मैं थोड़ा मिट जाता हूं। मैं जो तीन लोग का नाथ हूं वो मिट जाता हूं थोड़ा, दूसरों को मानने से बना नहीं मैं, तब नहीं मानने से मेरा जो स्वरूप बना हुआ है वो मिटता नहीं। किसी के मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है स्वरूप में। बार में भी कले को चांदी माने तो फिर चांदी बन जाता है क्या? कले का वो खोटा रुपया बनाते ना नकली, तो कोई चांदी थोड़ी बन जाती सफेद आई होने से। और चांदी पर सिक्का नहीं लगावे तो भी चांदी चांदी रहती है। मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? वस्तु मानने नहीं मानने से बदलती नहीं कोई। जिस प्रकार श्वान हड्डी को चबाता है और उसके गाल तालू तथा मसूड़ों से जो खून निकलता है, मसूड़ मतलब पेटा, उसे स्वादिष्ट मानता है, उसी प्रकार मूड स्वयं दुख में सुख की कल्पना करता है, आकुलता के भाव में सुख की कल्पना करता है। बनारसी दास ने भी वो दृष्टांत लिया है नाटक समाचार में। जैसे को कुकर क्षुधित सुखे हाड़ चावे, हाड़नी की कोर चौहर चुभे मुख में, गाल तालो रसना मसूड़नी को मांस फाटे, चाटे निज रुधिर मगन स्वादन स्वादन सुख में, तैसे मुंड विषयी पुरुष रति रीति ठाने, तामे चित साने हित माने खेद दुख में, देखे प्रत्यक्ष बल हानि मलमूत खाने, गहन गिलानी पगे रहे राग रुख में। नाटक समाचार में परफंद में सुख कंद सुख मानता है, सुख कंद माने सुख कंद आत्मा, परफंद में ही आत्मा सुख मानता है, जो है तो सुख कंद खुद ही सुख कंद है, लेकिन परफंद में सुख मानता है। जैसे अग्नि की ज्वाला शरीर में लगने पर कहता है कि मुझ में ज्योति का प्रवेश होता है, अरे जल जाएगा मर जाएगा, यदि कोई अग्नि की लपट को बुझाए तो उसके साथ लड़ता है। उसका इच्छित विषय में कोई बाधा डालता है तो उसके साथ झगड़ा करता है, और इच्छा में तो उसको जो आकुलता की ज्वाला पैदा होती है। इस प्रकार पर में दुख संयोग है, कोई पर को बुझाए तो उसे शत्रु जैसी दृष्टि से देखता है और क्रोध करता है। ऐसी बात है। उस पर योग में भोग मानकर यह जीव भूला है, स्वरस की भावना को याद नहीं करता, आत्मरस को याद भी नहीं करता, और 84 में पर वस्तु को स्व मानने से यह जीव चीर काल का चोर ही बना है पर वस्तु को अपना माना ने चोर बना है ऐसा बोले
चोर को तो तकलीफ
कोई चोर कहे तो बहुत दुख लगे और इधर तो सब चीज को अपनी मानकर चोर बना है और इसके फल में जन्मादि दुख दंड प्राप्त करता है उसका जो अपराध है उसका दंड भी भोगता है बराबर तथापि पर वस्तु की चोरी नहीं छूटती। देखो देखो तीन लोकानाथ भूलकर नीज ऐसे पर के अधीन हुआ देखो क्या हुआ स्वयं है बहुत वैभव भरा है उसमें और दूर नहीं है देखना दुर्लभ है देखे तो सुलभ है देखना दुर्लभ है लेकिन देखे तो सुलभ है। मैंने कोई लेना जाना नहीं पड़ता चीज लेने को जाना नहीं पड़ता वो तो प्राप्त ही है देखना दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि उल्टी आदत बना रखी है तो उल्टा मुंह फिरा है वो मुंह नहीं बदलते हैं अपना दिशा नहीं बदलता तो इसलिए दुर्लभ है।
अनंत का जो पिक्चर आज यूं हो यानी एक करोड़
ज्ञान स्व सन्मुख होकर के अपने को वेदे अपना अनुभव करे बस उतनी सी बात है। स्वयं अनुभूति स्वरूप है स्वयं है सो अनुभूति स्वरूप है सिर्फ बात उतनी है कि सन्मुख होकर के अंतर्मुख होकर के अपना वेदन करें बस। परसन्मुखता में वेदन है वो अनुभव में नहीं आएगा बात तो उतनी है इससे ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसलिए सुलभ भी है और स्वसन्मुख नहीं होता तो दुर्लभ भी है क्योंकि स्वसन्मुख नहीं होता। दृष्टांत सब बहुत प्रैक्टिकल सब बातें बहुत प्रैक्टिकल लिखे हैं उन्होंने। नहीं दृष्टांत दिया किसी ने पूछा कि तू कौन है किसने कहा कि मैं मुर्दा हूं मुर्दा कौन है फिर मैं नहीं जानता इसे पूछा तो मैंने खाना खाया खाना तेरे में आया क्या तो मैं नहीं जानता कौन खाता है शरीर खाता है या आत्मा खाता है कि मैं नहीं जानता तू नहीं जानता तो कैसे बोलता कि मैंने खाना खाया ऐसी बात है। मैं मुर्दा हूं ऐसा किसने जाना कि तब याद किया कि मैं जिंदा हूं किसने जाना तब पता चला कि मैं जिंदा हूं ऐसा तब दृष्टांत अच्छे लिए हैं अपने अनुभव को अनुभव के साथ उसको मिलान करें बहुत सुंदर बातें हैं उसमें। इस प्रकार यह जीव मानता है कि मैं शरीर हूं। जीव अपने को शरीर रूप मानता है और शरीर है तो इस शरीर में अपने तो की जिसने मान्यता की वह कौन है? ये शरीर में मैं हूं ऐसा मान्यता करने वाला कौन है? तो कहता कि मैं नहीं जानता कौन मान्यता करता है, तो मैं नहीं जानता ऐसा बकवास किसने किया? इस प्रकार यह अपने को खोज कर क्या इस प्रकार यह अपने को खोज कर देखने जानने और परखने में स्वरूप की संभाल करे तब सुखी होता है। स्वरूप की संभाल करे तो सुखी होता है, लेकिन खोज से वादी तो क्या करता है कि तर्क कुतर्क उठाता रहता है, उसको कोई खोज तो करना नहीं है। ज्ञान प्रकाश में ज्ञान स्वभाव है क्या? कोई चीज अंधेरे में खो गई हो तो नहीं मिले, और अंधेरे में खो गई हो तो उसको देखने का साधन नहीं है। अंधेरे में नहीं मिले वो स्वाभाविक है, तो बात तो हो सकती भी क्या करें अंधेरे में चीज खो गई है। लेकिन प्रकाश में जो चीज खो गई हो और नहीं मिलती है ऐसा कहे, उसके लिए क्या करें? अंधेरे में चीज खो गई हो और नहीं मिलती हो तो इनके लिए तो कह नहीं सकते कि भाई क्या करें अंधेरे में खो गई है। लेकिन जो चीज प्रकाश में खो गई हो और जो खो गई है वो भी प्रकाशमान है, प्रकाश स्वरूप है, अब कहता है कि नहीं मिलती है, नहीं मिलती है इसलिए कि तेरी खोज नहीं है। इसलिए तेरी खोज होवे और प्रकाश में प्रकाशमान चीज नहीं मिले ये बात संभव नहीं है। वो तो बहुत मर्यादित बात है। जैसे ये हीरा का जो व्यापार करते हैं वो एक डिश रखते हैं, उसमें वो देखते हैं अब वो मर्यादित क्षेत्र में वो हीरा है वहां, तो मर्यादित क्षेत्र में हो तो कहीं अमर्यादित क्षेत्र में खो गया हो तो तकलीफ हो जाए कि भाई सारे कमरे में कहां ढूंढना, किधर चला गया होगा। लेकिन ये तो मतलब मर्यादित क्षेत्र में है, वहां नहीं मिले वो कैसा बने? ऐसे ज्ञान में ज्ञान स्वभाव है क्या? ज्ञान स्वभाव कहां है? ज्ञान स्वभाव वही आत्मा कहां है कि ज्ञान में है, और ज्ञान तो अपने मर्यादित क्षेत्र में है। जितना शरीर प्रमाण है उसमें व्याप्त व्यापक रूप है, कहीं और जगह तो ढूंढने का है नहीं, वहां क्यों नहीं ढूंढे? और वहां ढूंढे और नहीं मिले ऐसा बनता नहीं, और नहीं ढूंढे और मिले वो कैसे बनेगा? बात तो उतनी है। अच्छा, ढूंढने का प्रयास करो, खोज करने का प्रयास करें, और नहीं मिले और कोई दिक्कत होए तो उसका विचार करें, लेकिन खोज ही नहीं करें और फिर शिकायत करें कि हमको मिलता नहीं आत्मा, हमको आत्मा मिलता नहीं, हमको नहीं मिला तो कहां खोजा? आप खोजने को गए मंदिर में या खोजने को गए ग्रंथ में, यहां से कहां से मिलेगा? है तो ज्ञान ज्ञान स्वभाव में ज्ञान ज्ञान में ज्ञान स्वभाव है, और कई जगह तो है ही नहीं। और ज्ञान प्रकट है, प्रकट है, अनुभव गोचर है। खोज नहीं करता है उसी को तो प्रमाद कहते हैं। मुमुक्षु की भूमिका का प्रमाद कौन सा है कि जब मुमुक्षु को बताने में आया कि तेरे ज्ञान में तेरा ज्ञान स्वभाव है, वहां खोज, पर वहां नहीं खोजता है तो ही तो वो तो उसका प्रमाद है, और क्या है। यही तो मामला है।
ज्ञान में ज्ञान प्रकाश
है, जब अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध अंतःकरण से तुझे क्या लेना है। अपने आप को एक और प्रश्न कर ले कि जब तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इतना महान लाभ सिद्ध पद का क्या, इसका इतना महान लाभ है। अगर शुद्ध अंतःकरण से सही रास्ते पे आने में कितना लाभ है, सिद्ध पद का है। तो अशुद्ध अंतःकरण में रह करके रख करके और क्या लेना है, कौन सी इससे बड़ी चीज लेनी है, क्या मिलने वाला है। चारों गतियों का दुख के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। जिस दुख को तू देखना भी नहीं चाहेगा, अनुभव करना तो कैसे चाहेगा। संसार में जो दुखी प्राणी है उसको देखना भी नहीं चाहता, अपने आप को ऐसा हो गया तो अनुभव भी कैसा करेगा। ये ऐसी बात है। तो अविवेक है तो भी अनंता, और विवेक होवे तो भी अनंता, ऐसी बात है। ये पहला कदम है, विवेक करना है। अविद्या रूप जड़ की अल्प शक्ति से तेरा महान शक्ति का घात नहीं हो सकता। वो अशुद्धता भी अशुभ शक्ति भी महान, अशुभ शक्ति मैंने परिणाम में जो योग्यता है उसको कहते हैं, और शुद्ध शक्ति है वो तो त्रिकाली है, शुद्धता। ना इतना महान पदार्थ को तो छोड़ता है, और जानबूझकर छोड़ता है। छोड़ता है उतना नहीं, जहां तक अनजान था वहां तक तो बात ठीक थी कि उसको माफ किया जाए, लेकिन जब बात सामने आई और फिर भी तू उसको छोड़ता है तो फिर तेरी विपरीतता भी महान है। सीधी बात है। तक को गवा देता है, जो तक मिली है उसको गवा देता है। मुनियों को निंद्रा नहीं आती। इधर यहां बुढ़ापे में कोई रिटायर हो जाता तो उसका कालक्षेप नहीं होता, सारे दिन में वो बोर हो जाते हैं। तो वहां वो तो थोड़ा बहुत भी अखबार वखबार पढ़ देता है, उनको कोई संग है तो वहां किसी के संग में भी समय गुजरता है उसका। लेकिन मुनि कोई काम हाथ में नहीं लेते, तो अपना ध्येय हासिल करने के लिए वो कितने अप्रमत्त है, कितने अप्रमत्त है कि आहार का विकल्प आवे तो उसको प्रमत्त किया जाए, कहा जाए क्या। आहार के विकल्प को भी प्रमत किया जाए, निंद्रा के विकल्प को भी प्रमत किया जाए, मर्यादित है। आहार भी मर्यादित, निंद्रा भी मर्यादित। और तो कोई उनको बिल्कुल कपड़े वपड़े का तो लप है नहीं कोई, और तो कोई है नहीं, झंझट ही नहीं कोई जीवन में, बिल्कुल किसी चीज का झंझट नहीं। और उतने अपने कार्य में उतने वो लगे हुए हैं, चक्रवर्ती बना छोड़ करके लगे हुए हैं, शांतिनाथ, कुंठुनाथ, हरनाथ, क्या चीज देखी भीतर में, ऐसी कौन सी चीज देखी। वो तो आगे वो कहा ना, इंद्रादिक संपदा है वो विकार मालूम पड़ता है, लिया ना। आगे आगे चला गया वो। नीचे नीचे आता है 31 पेज में। एक देश मात्र निज अवलोकन ऐसा है, किसका, स्वरूप का, निज मैंने स्वरूप का। एक देश मैंने पुराने अनुभव हुआ है, अल्प अनुभव। एक देश मात्र निज अवलोकन ऐसा है कि इंद्रादिक की संपदा विकार रूप भासती है। इंद्र के देवलोक की संपत्ति है, उस पर उपयोग जाता है तो उसको दुख का अनुभव होता है, वेदना होती है, क्या उसमें वेदना होती है उसको। जैसे शरीर में विकार होता है तो वेदना होती है ना, ऐसे रोग की वेदना होती है, ऐसे आत्मा को वेदना होती है। एक देश अवलोकन ऐसा है जो चतुर्थ गुण स्थान में, इसलिए मुनिराज है 24 घंटों इसके पीछे लगते हैं। स्वरूप में स्थिरता को नहीं छूटे, अपनी स्थिरता नहीं छूटे, इसका प्रयोग करने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं इसके पीछे। देखो हाँ, हमको ये लगता है कि आयु पूर्ण हुए उसके पहले मुझे मेरा परम पद की प्राप्ति कर लेनी है। ऐसा
नहीं, तो
वो कहते हैं कि भगवान ने ऐसा बोला है कि अरे मुनि, तुम प्रमाद में रह गया और ऊपर श्रेणी में नहीं गया, तो तुमको चतुर्थ गुण स्थान में 33 सागर की जल में जाना पड़ेगा। और वहां क्या है, स्वर्ग लोक में बलबल तांगारे में शिकाई होगी तेरी। क्या बलबल तांगारा, ऐसी बात ले, चिरकाल तक, बहुत लंबे काल तक
परिणति चालू रहती हो, रहती
है, पर परिणति उपयोग होता है। फिर भी कहाँ मुने जैसा और कहाँ चतुर्थ गुण स्थान, बहुत अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। और वो चाहते हैं कि कब मनुष्य होए और कब ही हमारा साधन है वो आगे बढ़ावे, इसलिए मनुष्य भाव को देवानुप्रिय ऐसा किया है, देवानुप्रिय, देव को भी अनुप्रिय है, सम्यक दृष्टि देव को अनुप्रिय है, ऐसी बात है। ये बहुत लिया है 30 साल के, ये जो 30वें साल के जो पत्र है ना, उसमें शुरू के पत्र बहुत अच्छे हैं। शरीर शरीर में वेदनी की असाता का परिणमन होता हो, उस वक्त शरीर का भी परिणामी स्वभाव को विचार करके शरीर और शरीर के संबंध से प्राप्त ऐसे स्त्री पुत्र आदि उसके प्रति मोह को विचारवान पुरुष छोड़ देते हैं, या तो इस मोह को मंद करने का प्रयास करने लग जाते हैं। क्यों? कि असाता वेदनी के निमित्त से कभी शरीर छूट जाएगा, तो छूट जाएगा तो आयु पूर्ण हो जाएगा, तो मनुष्यत्व पूरा हो जाएगा। ज्ञानियों ने मनुष्यपना चिंतामणि रत्न तुल्य कहा है। यह विचारों तो प्रत्यक्ष मालूम पड़े ऐसी ही बात है, विचार करने से वो प्रत्यक्ष मालूम पड़े ऐसी बात है, विशेष विचार करने से तो मनुष्यपना का एक समय भी चिंतामणि रत्न से परम मूल्यवान और महात्मवान है। अगर देहार्थ में देह के अनुकूलता में वो मनुष्यपना व्यतीत हो गया तो उसकी कीमत एक फूटी कौड़ी जितनी भी नहीं है, ऐसा निसंदेह देखने में आता है। देखो कैसी बात लिया है। मुमुक्षु जीव को सिर्फ आजीविका मिलती हो तो उसमें भी संतुष्ट होकर के आत्महित का प्रयास करें, साथ करें। देह और देह के संबंधी जो कुटुंब है उसकी बड़ाई के लिए परिग्रह आदि की स्मृति भी नहीं होने दे। क्या मुमुक्षु उसका स्मरण भी मत करे कि हमारा परिग्रह बढ़ने से हमारी समाज में बड़ाई सबको लगेगी, ऐसा स्मरण भी मत करो तुम। स्टेटस का स्मरण भी मत करो, ऐसा कहते हैं क्या? स्टेटस का स्मरण भी मत करो, क्योंकि परिग्रह आदि की प्राप्ति कोई ऐसे कार्य है कि आत्महित का अवसर भी उसको प्राप्त नहीं होने देगा। ये ऐसी चीज है, ऐसा कहते हैं। और अब क्या है कि आयु स्वल्प है, बलवान असीम सत्संग है। कितना है? सीमा जिसकी नहीं है, ऐसा बलवान सत्संग है। पूर्व का आराधकपणा नहीं है, अनाराधकपणा है। वर्तमान बलवीर्य की पुरुषार्थ की हीनता है। ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना हुआ, नहीं प्रतीत किया हुआ, ऐसा जो मार्ग है वो प्राप्त होना दुष्कर होता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। फिर भी जिसको एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे प्राप्त करना ही है, उसको ऐसी परिस्थिति में भी अवश्य मार्ग मिलता ही है। देखो लौकिक प्रसंग में मुमुक्षु जीव अधिक हर्ष विषाद कभी नहीं करता, उसी को मुमुक्षु कहते हैं। ये शुरू के पत्र बहुत अच्छे हैं, 30 साल के, ये 725, 727, 725, 26, 27, 723 सब अच्छे हैं। 729 है, और संयोग की चिंता तो एकांत आत्मगुण रोधक है। ये टेंशन में आते ना लोग,
संयोग की जो चिंता है वो तो एकांत आत्मगुण रोधक है। क्या बताया, आत्मा का गुण को उत्पन्न करने देगा नहीं, एकांत आत्म हित की प्रतिबंधक है। इसलिए संयोग की तो चिंता ही छोड़ देना, विकल्प ही छोड़ देना संयोग का, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब होने वाला होगा, मुझे अब तो मेरा काम करना है, पहले सबसे पहले मुझे मेरा काम करना है। और शुद्धोपयोग की प्रशंसा कितनी की है 735 में, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट नियम, और उसका फल स्वरूप उत्कृष्ट में उत्कृष्ट लब्धि, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ऐश्वर्य मैंने सिद्धि, वो जिसमें सहजे समाविष्ट होता है ऐसा निरपेक्ष अविषम उपयोग को मैं नमस्कार करता। शुद्धोपयोग को नमस्कार किया है क्यों कि सब इसमें आ जाता है, उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट नियम सब उसमें समा जाता है। एक 737 बहुत अच्छा है, आरंभ और परिग्रह को इच्छा पूर्वक कोई चाहता है तो आत्मलाभ को विशेष घातक है, और वारंवार अस्थिर और अप्रशस्त परिणाम का हेतु है, बहुत पाप के परिणाम का वो कारण है, उसमें कोई संशय नहीं है। और जो नहीं चाहते उनको भी आरंभ परिग्रह पूर्व कर्म से आ पड़ते हैं, तो ज्ञानी पुरुष उसको आत्म का स्थिरता का अंतराय जानकर उसको भी छोड़ने की चाहना करता है, ऐसा मार्ग परम कृपालु ज्ञानी पुरुष ने ऐसा त्याग मार्ग का उपदेश दिया है, वो मुमुक्षु जीव को अपनी शक्ति के अनुसार अनुसरण करने योग्य है। देखो शुरू से फिर 738 में अपूर्व अवसर आता है, लेकिन इसके पहले के सब पत्र मुमुक्षु के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें निवृत्ति की बहुत प्रेरणा है, 30 साल की उम्र में जो पत्र लिखे हैं सभी मुमुक्षों को बहुत निवृत्ति की प्रेरणा दी है। अपना समय मूल्यवान है, घुमाओ मत गवाओ मत, अब उसका सदुपयोग कर लो, ये बात क्या है।